आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना बेहद सुखद रहा। उन्होंने कहा कि जब विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दो बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो इससे जनता को लाभ होता है और आपसी लाभकारी सहयोग के अपार अवसर उत्पन्न होते हैं। प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ कम होने की घोषणा के लिए भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ट्रंप के शांति प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे द्विपक्षीय भागीदारी को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित फार्मा कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के इस महासंगम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी के रोल मॉडल के रूप में आज निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि हम लोग लखनऊ में एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश अपने हरेक निवेशक को SSS की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इसकी पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाता है।
कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का विस्तार अभूतपूर्व रहा है।
मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत एट 2047 जैसे अभियानों ने मैन्युफैक्चरिंग, नवाचार और मानव विकास को नई दिशा दी है। G20 की अध्यक्षता और वैक्सीन कूटनीति में भारत की भूमिका ने हमारी वैश्विक जिम्मेदारी और क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाया है और दुनिया ने पहचाना है। इस परिवर्तन के सबसे स्पष्ट झलक स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में देखने को मिलती है।
इस अवसर पर औषधीय चिकित्सा उपकरण एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न MOU का आदान प्रदान भी हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत का रोडमैप बताया है। प्रयागराज में आज केंद्रीय बजट को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में श्री मौर्य ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन को प्रोत्साहन और किसानों की आय में बढ़ोतरी को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट में बायो फार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जैविक और जैव समान दवाओं के उत्पादन के लिए भारत के इकोसिस्टम को मजबूत करना है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने 3 नए राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और 7 मौजूदा संस्थान के उन्नयन के माध्यम से जैव औषधीय क्षेत्र पर केंद्रित नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य जैव औषधीय अनुसंधान, विकास, विनिर्माण और विनियमन में उच्च विशिष्ट मानव संसाधनों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है। इसके अलावा देश भर में 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थलों के विकास के प्रस्ताव के साथ एक व्यापक नैदानिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शामिल है। सरकार ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDA की क्षमता बढ़ाने सहित जैविक दवाओं के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने की भी घोषणा की है। बजट में किए गए प्रयासों से भारत को वैश्विक जैव फार्मा बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक मजबूत आधार मिलेगा। साथ ही घरेलू स्तर पर उन्नत और किफायती जैविक चिकित्साओं तक पहुंच में सुधार होगा। भानु प्रताप सिंह के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तकनीकी कंपनियां डेटा साझाकरण के नाम पर नागरिकों के निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकती। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के आदेश के खिलाफ मेटा और व्हाट्सएप की अपीलों की सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर कड़ी फटकार लगाई। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज दोपहर बाद कहीं कहीं आसमान में बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी तथा बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इससे लोगों ने दिन में फिर से ठंड का एहसास किया। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।